इसके बाद लंबी लिस्ट है। अब हमारे लिए कुछ गाइडलाइन है किस बात की, किन औरतों से निकाह नहीं हो सकता। गौर से सुनिए, मैं पांचवा पारा इसके साथ ही शुरू कर दूंगी क्योंकि ना सिर्फ टॉपिक एक है बल्कि बात एक है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खवातुकुम, हराम की गई तुम पर। हराम से आगे लिख लीजिए क्या, उन पर, उनसे निकाह करना हराम है। मुहर्रिमात कहते हैं ऐसी औरतों को। समझ लीजिए कि इस्लाम ने कुछ औरतों से निकाह हराम क्यों किया, उसकी वजह क्या है, सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर कुछ रिश्तों से निकाह हराम ना होता तो घरों के बाहर जो गंदगी है, घरों के अंदर कितनी ज्यादा होती। भाई बहन, माँ बेटा, फूफो भतीजा, भांजा खाला, इन रिश्तों में निकाह को हराम करने की वजह यह कि घर का माहौल प्योर रहे। हर वक्त लव, रोमांस, सेक्स का ही दिमाग पे तसल्लुत ना, और आप अपने घर में मुतमईन रहे। पता चले आप इधर आए, घर में भाई बहन और आपकी जान पे बनी भी है, बाप बेटी घर में है। और याद रखिए हदीस में आता है क्यामत के करीब मुहर्रिमात से जिना होंगे, क्योंकि जस्ट फॉर चेंज, बाहर का टेस्ट तो ले चुके, अब और क्या लेंगे। बाहर तो जाना पड़ता है, घर में तो मौजूद है। और इस पे कई जालिमों ने इतना गंद घोला, आगे कहीं मौका हुआ तो सुना दूंगी। वो कहते इस्लाम कितना बेवकूफ मजहब है। घर में एक औरत जो बड़ी आपके साथ रही, जिसके मिजाज को आपको जानते हैं, जो आपकी बहन है, उसको छोड़ के आपको एक गैर औरत से शादी करने की दावत देता है, जिसका आपको ना मिजाज पता, तो वो कहते हैं बेस्ट जोड़ जाए वो भाई और बहन का। ये जुमला, ये मैंने तफसीर में भी, लंदन में भी कोट कराया था रेफरेंस के साथ। अगर किसी को टू मच लगे तो अभी छोड़ दे। लेकिन आज ऐसे ऐसे लिखने वाले आगे, लिखारी और राइटर जो इस्लाम पे तनकीद करते हैं, कहते हैं बेस्ट शादी भाई और बहन की, तो ऑफकोर्स यही तो करेंगे। लकद खलक नल इंसान अफी अहसनी तकवीम सुम रदत ना होसफल साफिली। याद रखिए, जब इंसान इंसानियत से गिरता है ना, तो जानवर भी नहीं रहता। ये काम तो जानवर भी नहीं करते, उनको भी पता होता है कौन मेरा रिश्तेदार कैसे है। तो लिहाजा अल्लाह सुबहाना ताला ने कुछ रिश्तों को हराम कर दिया ताकि घरों में सुकून हो, प्यूरिटी हो। कभी कोई सोच भी नहीं सकता अपनी माँ से शादी करे, कोई सोच नहीं सकता बहन से करे, तो अल्लाह ताला कहते हैं किन किन से नहीं करना। तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ, बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं। पहले तो इसको देखिए, प्यार कितना आता है इन रिश्तों पे, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया। मैंने देखे कुरान पढ़ने के बाद अपनी रिश्तों से बड़ा प्यार हो जाता है। इसी तरह फरमाया, बनाते लखी व बनाते लुखती व महातुकुमल्लाती अरदानकुम, तुम्हारी भतीजियां और भांजियां यानी नीस और जो भी भाइयों बहनों की बेटियां होती हैं उनकी बात कर दी। और तुम्हारी वो माएँ जिनको तुमने दूध पिलाया यानी नर्सिंग मदर्स। पहले दौर में ये आम होता था, औरतें अपने दूध के साथ साथ दूसरी औरतों का भी दूध पिलवाती थी। फिर इसी तरह तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई हो, इन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक शौहर और बीवी वाला हो चुका हो। वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो और ताल्लुक है शौहर बीवी ना हो, तो इन्हें छोड़कर इनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई पकड़ नहीं। और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सुल्फ से हो यानी बहू, डॉटर इन लॉ कह सकते हैं। और ये भी तुम पर हराम किया गया कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो, मगर जो कुछ हो गया सो हो गया, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहां तक पारे का एंड खत्म हुआ, लेकिन मैं इसको चंद लफ्जों में भर दोहरा दू। तीन कैटेगराइज में आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं किन औरतों से हराम है रिश्ता। एक तो सगे रिश्ते हैं, जिसमें हमने देख लिया माँ, बहन, बेटी, बुपी, खाला। दूसरी सूरत कौन सी है, रजात, जिनसे दूध पिलवाया हो। आज ये आम नहीं है, लेकिन अरब माशरे में आम था। ये बहुत हेल्दी वे ऑफ तरबियत और बच्चों के रेस करने का था कि सेहतमंद औरतों से दूध पिलवाते थे। और इससे बाज़बा क्या होता था, मसलन आप में से किसी की औलाद नहीं है, अब आप कहते हैं हाय बूढ़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा वो होगा। छोड़ दीजिए, जिनकी औलाद है उनको भी नहीं पता उनके साथ क्या होगा। लेकिन मैं उन सब बहनों को जिनको अल्लाह ने औलाद की दौलत नहीं दी अगर, और वो चाहती हैं कि किसी को अडॉप्ट करें या उनकी को बुढ़ापे में टेक केयर करें, आप क्या करें, किसी का बच्चा लें और अपनी बहन जो आपकी अपनी बहन है, या आप उसको अपने किसी ऐसे रिश्ते से दूध पिलवा लें कि आप उस बच्चे की रजाई खाला बन जाए, रजाई पुप्पो बन जाए। अब जब रजाई खाला या पुप्पो बन गई, वो बच्चा आपका महरम है, आप उसको अपने घर रख लें, वो आपका ऐसे ही बच्चा है जैसे कि दूसरा बच्चा है, ठीक है। तो अडॉप्शन का बेस्ट वे क्या है कि किसी खून के रिश्ते से या उसको दूध पिलवाकर या वैसे ब्लड रिलेशन है जो, उनको रख लें, तो आपकी टेक केयर करेंगे। तो ये इस्लाम के सारे आप कह लीजिए कि मीन्स हैं जिन तरीकों से हम कमियों को पूरा कर सकते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद नहीं थी और उनको कोई इसकी तड़प भी नहीं इस तरह की दिखती, लेकिन 18 साल की उम्र में बेवा भी हो गई, 57 ईयर्स के तक तकरीबन वो जिंदा रही आपके बाद। तो क्या करती थी, किसी और के बच्चे को लाती, अपनी बहन का दूध पिलवा लेती हजरत अस्मा से, तो उनकी रजाई खाला बन जाती। इस्लाम ने हर चीज का कॉम्पनसेशन दिया। ये जो हमने अपने ऊपर महरूमियां रखी हुई, आए बेटा कोई नहीं, बेटी कोई नहीं, आए क्या करें, क्या हो जाएगा, ये हमारा ख्याल है। आप इस्लाम के तरीकों पर चलें, आपको अल्लाह ताला सारे रिश्ते वापस दे देगा। फिर इसी तरह से आगे फरमाया कि तुम पर एक निकाह में दो बहनों को, यानी एक मर्द एक ही वक्त में दो बहनों को रख नहीं सकता। हम तो वैसे ही दूसरी शादी के खिलाफ है, हमें इस हुक्म से क्या लगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ अल्लाह हराम कह रहा है। मैं जुमला बोलूंगी, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन हमारे कल्चर में कहते हैं साली आधे घर वाली। क्या ये एक उम्मत वसत को सूट करता है जुमला? कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? इस्लाम पाबंदी लगा रहा है। और याद रखिए, जितनी खराबियां यहां आती हैं शायद कम आती होंगी। और होती भी कब है? जब एक बहन बच्चा पैदा कर रही है और दूसरी बहन घर में आके टेक केयर के लिए रही, पता चला वहां गलत तरीके शुरू हो गए। हमेशा आग और पानी को अलग रखें। इस्लाम नहीं चाहता कि हमारे घरों को आग लगे। फिर इसी तरह से आप देखिए, अल्लाह ताला ने फूफी और भांजी और भतीजी, खाला और फूफी के साथ भी एक रिश्ते में नहीं रख सकते, उसका जिक्र हमें हदीस से मिलता है। अब ये सारी लिस्ट तो पूरी हो गई, क्या कंप्लीट हो गई? औरतों की लिस्ट जिनसे निकाह नहीं हो सकता, नहीं। एक औरत रह गई है, वो कौन है आप में से कोई गैस करे? यानी फूफी मामू खाला सब आ गए, जो भी हमने पढ़ लिया, एक रिश्ता भी बाकी है, वो कौन सा है? वो तो गुजर गया, आ गया सौतेली माँ भी आ गई जी। चची नहीं है महरम, अभी आप समझ जाएंगे जब मैं अगली बातें करूंगी जी। शाबाश, हर शादीशुदा औरत, हर औरत जो इस वक्त किसी मर्द के निकाह में है, वो दुनिया के हर मर्द पे हराम है। तो देर इज नो अफेयर आफ्टर मैरिज, जिसको पहले तो लोग कहते थे कि कुंवारों के अफेयर्स हैं, अब शादीशुदाओं के अफेयर हैं। यही है वल मुहसनात मिनन निसा, इस हुरमत वाले रिश्तों में एक और क्या है और वो कौन है? और वो औरतें भी तुम पर हराम की गई जो किसी दूसरे के निकाह में हो। तो आप अब सोचिए, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मुहर्रमात वही होती हैं जिनसे शादी नहीं हो सकती, तो फिर दिस एंड दैट। तो यहां तो आपको वो बात समझ आ गई कि हर शादीशुदा औरत पर्दा छोड़ दे, क्योंकि निकाह तो किसी से कर नहीं सकती। इस पे बहुत डिटेल है लेकिन इस वक्त मौका नहीं। लेकिन यहां नोट कीजिएगा लफ्ज मुहसिना, एक शादीशुदा औरत जो होती है ना, वो किला बंद है। हसन अरबी में किले को कहते हैं, फोर्ट्रेस, और इसी तरह से सिटाडेल भी बोलते हैं गालिबन। किले में आती है ना जैसे कोई चीज, तो सिक्योर होती है। शादी के बाद एक औरत किला बंद होती है। आज के दौर में एक आम बात देखी गई है कि लोग शादी के नाम से उलझने लगे, और फिर जब उम्र गुजर जाती है फिर होती नहीं है। आप सब जो बच्चियों की माए हैं, अपने लिए नियत कर लें, दुआ भी करें, पहले अपनी बच्चियों को उस तरह से रेज करें, और उसके बाद जो पहला रिश्ता शरीफ खानदानी शख्स का मिले, बिस्मिल्लाह कर दें। वो खूब से खूब तर की तलाश में दिन ब दिन, हमारा स्टैंडर्ड तो फिर कहते हैं चलो अब कम पे भी राजी हैं, लेकिन हम अपनी जात से खो चुके होते हैं। फिर लोगों की डिमांड्स बहुत सारी होती हैं। तो जिस सोसाइटी में अनमैरिड लोग ज्यादा होंगे या शादी के रास्ते में इतनी रुकावटें होंगी, वो दूसरे काम कब करेगी? इस्लाम चाहते भूख लगी ना, जल्दी से कुछ खा लो ताकि सर में दर्द ना हो, वॉशरूम में जाने की जरूरत पड़ी जाओ चले जाओ ताकि रिलैक्स हो जाओ, फिर तुम नमाज पढ़ सको। इसी तरह इस्लाम का मशवरा क्या है कि जब बच्चे बच्चियां प्यूबर्टी की एज पे आ जाते हैं, जब उनमें ये इमोशंस शुरू हो गए, और थोड़ा सा उसमें कुछ दो चार साल ऐड कर लीजिए कि जब वो लाइबिलिटीज को ले सकते हैं, शादी कर दो। आज आप देखिए जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं, वहां 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं अलाउड, लीगल नहीं है। तो ताल्लुकात और बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप हाई स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, और इससे भी नीचे अब तो बात चली गई, जहां लड़का लड़की हर वक्त साथ, चारों तरफ गंदगी, एड्स गंदे, बाहर गंद, अंदर गंद, और आप कहते हैं कि शादी नहीं कर सकते। तो ये वही बात है कि इसी भूखे को आप खूब बिरयानी कौरमे दिखाएं और को खा नहीं सकते। इसलिए बच्चों की शादियों में देर नहीं करनी। इसके लिए अल्लाह ताला का यही फैसला है कि ऐसी औरतें फिर सिक्योर हो जाएंगी। फिर उसके बाद फरमाया, अलबत्त ऐसी औरतें से एग्जेम्प्ट है जो जंग में तुम्हारे हाथ आए, ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम की गई। यदि लौंडी या गुलाम, अब कुछ लोग हो सकता है इस पर भी बात करें तो ये नॉन इश्यू है। आज लौंडी और गुलाम बसते ही नहीं है, आज उस पर बात करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन याद रखे कि ये इस्लाम का इशू नहीं था, ये आज के दौर में इशू बन गया, लिहाजा अल्लाह ताला ने ये बात करके बता दिया। अब यहां अगर आप आयत देख रहे हैं पांचवें पारे की पहली जीम, जहां लिखा है ना वहां एक छोटी सी लाइन डाल लें, इससे पीछे पीछे उन औरतों की लिस्ट थी जिनसे निकाह नहीं कर सकते। अब आगे क्या है इस आयत के अगले हिस्से में, किन से कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, यानी मैं इस पहले रुकू को पांचवे पारे के कहती हूँ, इस्लाम में निकाह की फाउंडेशंस, चार बुनियादी चीजें आप इस एक रुकू के अंदर से निकाल सकते हैं कि निकाह की क्या शराइत है। वही बात हम देखने लगे, वहिल लकुमा वरा जालिकुम, और हलाल है इनके लिए वह बाकी सारी औरतें, यानी ये रिश्ते सारे खत्म हो जाएं और शादीशुदा औरतें जो पहले से किसी के निकाह में, इसके अलावा हर औरत अवेलेबल है, शादी कर लोगे। कब कैसे? अंत तबी वाली को, पहली शर्त क्या है? अपने मालों के जरिए हासिल करो हक में। नंबर वन पे आप हक में लिखना चाहें लिख लें, यानी इस्लाम में निकाह की पहली शर्त साथ क्या आ गई इधर, हक महर है, बशर्ते के हिस्सारे निकाह में महफूज करो, ये दूसरी शर्त है। यानी टाइम बाउंड शादी नहीं हो सकती, पेपर मैरिज नहीं हो सकती, एक साल के लिए शादी नहीं कर सकते, चूंकि इस मुल्क में 3 माह का वीजा है, कोई मेरी 3 माह के लिए शादी करा दे, जाते हुए तलाक दे दूंगा, ये नहीं हो सकती। इस्लाम में शादी का मकसद सिक्योरिटी होता है, ये हलाला जो करवाते हैं ये इसीलिए नाजायज है, क्योंकि उसमें तो इस शर्त के साथ शादी की जाती है कि आपको तलाक देनी पड़ेगी, तो आप कह लीजिए कि घर तोड़ने के लिए नहीं, घर बसाने के लिए शादी होगी। फिर इसके बाद ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो, शोहर बीवी का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक ना रहे बल्कि जिम्मेदारियों का ताल्लुक हो, फिर जो इस दवाजी जिंदगी का लुत्फ तुम इनसे उठाओ, इसके बदले में इनके मेहर बतौर फर्ज के अदा करो, अलबत्ता मेहर की करारदार हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ताला अलीम और दाना है। अब आपके पास सवाल है कि ये शरायत तो हो गई जिसमें वली भी आ गए, अगर आप इधर हाईलाइट करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम की जो शरायत है, मैं ऐसी चंद बोल देती हूँ, हक महर लाजिम है, दें या ना दें उसका जिक्र लाजिम है, बाद में दें, वक्त पे दें, कैश की सूरत में दें, किसी फॉर्म में दें, जेवर में दें, इट्स फाइन, ये चलेगा। दूसरी बात है कि इजाबो कबूल, मुंह से बुलवाना पड़ता है कि क्या आप इतने हक महर पे अपनी बेटी या फलां को देते हैं। हम कहते हैं ना लड़की लड़के का निकाह होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्शियस करने के लिए बता दूं कि लड़की लड़के के बीच में निकाह की गिरा नहीं लगती, लड़की के बाप और लड़के के बीच में लगती है, क्योंकि हदीस में आता है कि ला निकाह इल्ला बी वलीयन, इस्लाम में कोर्ट मैरिज की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? कि अगली आयत का हिस्सा पढ़ लेते हैं फिर उस पर मजीद बात समझ आ जाएगी कि जब किसी को कोई आजाद औरत नहीं मिल रही निकाह के लिए तो क्या करे, वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन, और तुम में से जो शख्स इतनी कुदरत ही नहीं रखता कि खानदानी मुसलमान औरतों यानी मुहसनात से निकाह कर सके, तो इसको चाहिए कि तुम्हारी लौंडियों में से किसी की लौंडी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, बस इनके सरपरस्तों की इजाजत से इनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीके से इनके हक मेहर अदा कर दो ताकि वो निकाह के हिसार में महफूज होकर रहें, आजाद शहवत रानी ना करती फिरें और ना चोरी छुपे आशनाइयां करें। फिर जब हिसारे निकाह में महफूज हो जाने के बाद हो जाएं और इसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हों तो इन पर इस सजा की निस्बत आधी सजा है जो खानदानी औरतों यानी मुहसनात पर मुकर्रर है। ये सहूलत तुम में से इन लोगों के लिए पैदा की गई जिनकी शादी न करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह ताला बख्शने और रहम वाला है। यहाँ पे किस्म का ये टॉपिक वाइंड अप होता है क्योंकि मौजू बहुत अहम है और बहुत ज्यादा हमारे लिए इसमें गाइडलाइन है बींग उम्मत वसत, तो मैं इस्लाम का मिजाज थोड़ा सा आपके सामने खोलना चाहती हूँ। पहली बात है, और ये सब कुछ हमने इन आयतों में पढ़ा है लेकिन इतनी फासली अभी आप उसको कॉप नहीं कर पाएंगे, आप चाहें तो इन आयतों की डिटेल तफसीर सुन के बाद में अपने नोट्स को पूरा कर लें, लेकिन इस्लाम क्या चाहता है? पहली बात है कि शादी से पहले लड़के और लड़की की रजामंदी लाजिम है। इस्लाम फोर्स मैरिज को मानता नहीं, अगर कोई बाप जबरदस्ती बेटी का निकाह कर दे और बेटी नहीं चाह रही तो वो निकाह हो तो जाएगा लेकिन लड़की को इख्तियार है कि वो उसको तुड़वा सके यानी डाइवोर्स ले ले, गुनाह नहीं होगा उसको। लड़की बाप से पूछे बगैर निकाह कर ले, होगा ही नहीं, फर्क समझ गए? बेटी बाप से या वली से बगैर इजाजत के निकाह कर लेती है खुद या किसी और को वली बना लेती है, अच्छा अब्बू नहीं मान रहे तो मामू को ले जाते हैं, नहीं हो सकता, बाप नहीं मान रहा तो भाई को साथ लगाए, नहीं, करीब के वली के बगैर नहीं। क्यों ये इतनी शर्त है? मैं आपसे पूछती हूँ, कोई चीज आपको अनअटेंडेड कहीं पड़ी हुई मिले आप उसकी ज्यादा वैल्यू लेंगे, या कोई चीज आपको बड़े प्यार से सिक्योरली कोई ला के दे के ये मैं आपको दे रहा हूं इसकी कदर कीजिएगा? जो लड़कियां खुद अपने रिश्ते जोड़ लेती हैं फिर तोड़ती हैं तो उस वक्त भी कोई नहीं होता, पहले दौर में लोग क्या कहते थे, भरे बुरे घर में लड़की दो, कोई मसला होगा तो लोग बचा लेंगे। आप सब में से मुझे यकीन है कि अक्सर ने अपनी शादी के आगाज में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आंख खोली। आप जिस घर में शादी होकर गई, वहां देवर जेठ सास नन सब थे। कभी खुदा ना खासा शोहर बीवी के मिजाज में कोई गर्मी सर्दी हुई, सास आगे आ जाती, खबरदार इसको कुछ ना कहना। ससुर तो हमेशा बहू की हिमायत करते हैं, इसको कुछ ना कहना। मियाँ चुप हो जाते हैं। अब ये इतने इसके हम ख्याल है, मैं क्या बोलूं। इसके बरक्स आप आ जाइए बर्गर फैमिली, या आप वन यूनिट फैमिली, या सिंगल फैमिली, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं कौन मनाए। इसीलिए तो फिर झटपट में मामले बिगड़ जाते हैं। लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो अगर लोगों से कुछ तकलीफें भी आएंगी तो खैर भी होगी। लिहाजा खुद से शादियां कर देना इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, कदर नहीं होती। वो लड़के जो लड़कियों को ले भी जाते हैं, बाद में कहते तू वही है ना जो आ गई थी। और इस पे अक्सर मैं कहानी वो सुनाती हूँ कि एक लड़का जो एक लड़की से इन्वॉल्व था, बिलाखिर कहने लगा तुमसे शादी तब करूंगा जब तुम अपने बाप का सर काट के मुझे पेश करोगी। खैर उसने किसी से मदद ली और कहा मेरे बाप को कत्ल कर, उसका सर ला के अपने महबूब के पास दे दिया, लो जी अब कर लो। कहने लगा अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा, जिस बाप ने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, तुमने उसका सर काट दिया, तुम कल मेरे साथ क्या करोगे, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। इट्स ट्रू, बस दफा किसी एक लड़के की मोहब्बत में लड़कियों की आंखों पे वो पट्टी पड़ जाती है कि वो झूलों में झुलाया जाना और लोरियां देना और कंधों पे उठाना और बाबुल के गीत और माँ की मोहब्बत सब भूल जाती है। मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। आई इधर जाती हैं, उधर चंद महीने के बाद फिर रोती हुई वापस आती हैं, सॉरी माफ कर दें हम जल्दी में थे। ये इस्लाम ने एक इज्जत दी औरत को। औरत बड़ी प्यारी चीज है, बेटियां तो इतनी मीठी होती हैं, जिनके साथ इतने लाड जितने प्यार देखे वो लड़की खुद उठ के चल पड़े, बाप को अच्छा लगेगा। और ये आज इतना बिग इश्यू बन गया, इसीलिए फिर आज पेरेंट्स भी कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे। मैं अब सब पेरेंट्स को भी ये कहूंगी, डोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग। ऐसी शादियां होती देखी, लड़का नॉन मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम है, और माँ बाप क्या करे मजबूर है, ना हम ना करेंगे तो ये खुद करेंगे, तो भी शादी की क्या जरूरत है, फिर ऐसे ही जाने दे। ऐसी शादियां भी देखेंगी, प्रेग्नेंट लड़कियों की शादियां हो रही हैं, क्या करें मजबूरियों में। ये गंद जिस माशरे में होगा वहां कभी उम्मत वसत पनपे की नहीं। ये उनको सूट करता है जिनका कोई दीन मजहब नहीं है, मुसलमान प्योर होते हैं, उनकी सोचें प्योर होती हैं, वो कभी तब्दीली ऐसा नहीं चाहते। अब शादी करनी है तो कैसे करें, लड़की देखी अच्छी लगी, आपको अपने बेटे के लिए सूटेबल लगती है, सब कुछ देख लिया, अच्छी है, घर भी अच्छा है, शरीफ है, समझदार लगती है, माँ भी अच्छी है, सब दिल बन गया, ठुक गया, बैलेंस गया। अब आप अपने बेटे को बुलाइए, घर वालों से इजाजत लीजिए कि देखिए ऐसे शादी नहीं होगी, मेरा बेटा आपकी बेटी को देखेगा, देख सकता है, बात कर सकता है, व्यूज डिस्कशन कर सकते हैं आपस में, लेकिन तन्हाई नहीं होगी। आप साथ बैठे, कोई बैठे, उसका बैठे, थोड़ी देर में बात करके थोड़ा मौका ले लें, जितना भी है करके देख लें। ये नहीं हो सकता कि शादी से पहले ही कोई इतनी ज्यादा डेटिंग और लिविंग टुगेदर है कि हम चेक कर रहे हैं, और जब जितना क्लोज होता है बंदा शादी से पहले, मंगनी के बाद उतनी मंगनियां ज्यादा टूटी हैं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है लोगों की, हम काउंसलिंग भी करते हैं, एक हमारा इश्यू है दुख सुख, तो उसके वजह से कई चीजें सामने आती हैं। सिर्फ फ्री फीस भी लेला लोगों को मशवरा दिया जाता है कि क्या इश्यू है। बिलीव मी, जहां शादी से पहले मंगेतर या फियोंसी के साथ घंटों बातें करना, होटलिंग करना, खाने खाना अलाउ किया, उधर शादी की नौबत ही नहीं आई। वो कहते ने मैंने इसको बहुत देख लिया, आई डोंट लाइक हिम, खत्म भाई। वो मंगेतर है, ही इज फियोंसी। फियोंसी और हस्बैंड में जमीन आसमान का फर्क है, जैसे एक लवर या बॉयफ्रेंड में और मंगेतर में फर्क होता है। तो भोले भा शादी हो जाए तो अच्छा, रिश्ता तय नहीं हुआ आप दिखा दीजिए, बात कर लें, इट्स ओके, इनका हक है। इसी तरह आप अपनी बेटी को भी दिखाएं, पूछें, कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, इधर अल्लाह ने बात कर दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक सवाल आपके जहनों में होगा जो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी कि अच्छा फिर अपनी पसंद की शादी, लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया तो लड़के को लड़की आ गई है तो अब क्या करें, उस वक्त भी विलन बन जाए, ये शादी ही नहीं हो सकती, तुमने गैरत कर दी, बाप की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस जगह हमने इतनी आजादियां दी, ये आज क्यों आपकी गैरत जागी जिस दिन लड़का लड़की शादी की इजाजत मांग रहे हैं। पहले आप कब कहां थे, आपकी बच्चियां रातों को आधी रात तक बाहर हैं, वो शाम तक बाहर है, वो इतने घंटों जब बाहर है ना चाहते हुए भी एसोसिएशन हो जाती है, नेक लोगों की भी हो जाती है, फितरी बात है। जब भूख लगती है तो बंदे की नजरें उठती हैं। आपने अपने बच्चों को इतना बड़ा क्यों किया कि वो इधर उधर देखें। जब छोटी उम्र में रिश्ते तय होते थे, होते हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके अभी अकल आने से पहले शादी हो चुकी होती है, सोचा ही कुछ नहीं था, जैसा मियाँ मिला गुजारा हो गया, सोचा ही नहीं था कैसी बीवी मिलेगी, वो गलतियां करते हैं। बाद दफा आपने देखा होगा शादी के बाद बापों के से डांट खाते लड़कियां अपने मियाओं को देखती हैं, हर हफ्ते वो पैसे मांगते हैं, अबू पैसे दे दें, लड़की सोचती अच्छा ये मेरा हस्बैंड जो अभी मेरी शादी अपने अबू से पैसे लेता है, बस वो अबू की कदर उस लड़की के भी जेब में हो गई। और जो बहू आई पहले ही अपने मियाँ के घर में और उसने कोठी बंगला, वो सास ससुर को क्यों पूछेगी? फिर वो कहती लो हम इंडिपेंडेंट है। जहां किसी को इंडिपेंडेंट, आप लिख के देखिए, इंडिपेंडेंट को खोल के देखेंगे ना, जब आप किसी को इंडिपेंडेंट करके देखेंगे ना, वह मसले उठेंगे क्यों घर टूट रहे हैं। आज मुस्लिम डाइवोर्स रेशियो और नॉन मुस्लिम रेशियो बराबर क्यों हो गया? क्या मत वसत लोगों को यह दिखा रही है कि इस्लाम का सोशल सिस्टम खराब है? नहीं, इस्लाम वो है जो इस कुरान की आयतों में बंद है। सूरह बकरा में तलाक पढ़ चुके, यहाँ ये पढ़ चुके, आगे भी ये इशू चलते रहेंगे। मसला ये कि हमने इस किताब को बंद किया हुआ। आज आप कहें कि आई नीड अ मैरिज अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगी, शुरू से लेके आप कहते अच्छा 16, 17, 18 साल की लड़के में शादी कर दे लड़के की, ये भी एक बड़ा बिग इशू हमारे लिए बन जाता है। तो फिर आप देखिए कि जब मुस्लिम माएं अपने बच्चों की तरबियत करती हैं तो वो 16, 17, 18 साल की उम्र वो कोई अल्लड़ बल्लड़ के नहीं बुद्धू होते कि जिनको टमाटर और सेब का फर्क ही नहीं पता। और वो ऐसी लड़कियां नहीं होती जो कहती आई डोंट नो दालों के नाम तो मुझे आते ही नहीं है। संजीदा तरबियत होती है तो 16, 17 साल की उम्र के लड़के वो सिंध को फतेह कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 16, 17 साल के थे, सिंध फतेह करके आ गए। मोविज और माज अफरा के बेटे अबू जहल का सर काट के आ रहे हैं। आज हमने बच्चों को एक छुनछुना बना के पाला। 12 साल की लड़की तो कहते बेबी, टांगे भी नंगी, बाजू भी नंगे, व्हाट आर यू डूइंग? ये बेबी बड़ी हो गई है, ये शादी के काबिल हो रही है, आप अभी इसको बेबी बना रहे हैं। और वो बाबा बाबा बुद्धू बैठे हुए डुल्ले और एक हाथ में चिप्स है, एक में कोक है, और अम्मा ये, और वो जरा सी बात पे पाँव मारते हैं, मेरा आईपैड नहीं, मेरा आईपॉड नहीं, किधर चले? ये तो एक दुख की कहानी है, इसको ना छेड़े। लेकिन आज हमने अपने बच्चों का हक नहीं दिया, इसलिए वो परेशान है। तो लिहाजा इस्लाम का एक अपना मिजाज है। इस्लाम किसी दूसरे के कपड़े नहीं पूरे आएंगे इसमें। इसके लिए जब हम इसको स्ट्रांग कर लेंगे पूरी दुनिया हमें देखेगी। मुस्लिम मुल्कों में कोई डाइवोर्स नहीं। चलिए मैं और आप आज यहाँ नियत करते हैं एक अच्छी सी, माशाल्लाह इस रमजान में हम आज नियत करते हैं, हमने इस्लाम के सेटअप को समझना है, पहचानना है। हम इस रमजान से अगले रमजान तक इस पूरे मुल्क में एक मुस्लिम डाइवोर्स फाइल ना हो, इज इट पॉसिबल? कोई मुस्लिम कंफ्यूजन ना, कोई क्राइसिस सेंटर वालों को औरतों को पैसे ना देने पड़े कि मियां ने निकाल दिया अब हम तो तुम्हें देंगे। देखिए इस्लाम को कैसे ये लोग स्टडी करेंगे। कोई क्राइम हो और उसमें पूरे इस साल के एंड पे लोग जब फिगर्स दें कि 2015 के एंड पे, वो कहते हैं स्ट्रेंज थिंग, पूरे साल में जितने क्राइम हुए उसमें कोई एक भी मुस्लिम नहीं था, जितने रूल्स ब्रेक हुए कोई मुस्लिम नहीं। करके दिखाइए, बी अ करेक्टर जो कि अनबीटेबल हो, तो जब आप और मैं इस तरह बन जाएंगे लोग खुद इस्लाम को बनाएंगे। आज मसला यह है कि इस्लाम कुछ और है और मुसलमान कुछ और है, और आज के लोग इस्लाम नहीं पढ़ रहे, वो मुसलमानों को चलता फिरता देके में गालियां दे रहे हैं। वल्लाही आज भी कुरान कम जलाए जा रहे हैं, आज भी मुसलमानों को ज्यादा टीस किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ये सारी बातें करके देखिए, बकरी आयतें मैंने जो कह दी इतनी लंबी बात, अल्लाह ने उसको चंद लम्हों में समेट दिया। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर इन तरीकों को वाजे कर दे और इन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह करते थे। सच है ना, पहले लोग जिस तरीके पे थे वो काफी ज्यादा इस्लाम के करीब था। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा करता है, वो अलीम भी है और दाना भी है। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है। मगर जो लोग, इसको हाईलाइट कीजिएगा, ये है असल में पिन पॉइंट, क्यों लोग इस सेटअप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कबूल नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह का इरादा कुछ और है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर हो जाओ। ये मसला है। रिबेलियस कब होता है बंदा? जब ख्वाहिश नफ्स आती है, और ख्वाहिशात के नाम पे हम जब दूसरों को देख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि वो खुशी तो होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। हर शादी के बाद में आता है कि फिर वो दोनों हाथों में हाथ डाल के भागते उछलते कूद के जा रहे हैं, देखो शौहर बीवी खुश हो गए, हस्बैंड वाइफ खुश हो गए। लेकिन इस्लाम के तरीकों को अगर हम अपने सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि रियल खुशी यहां मिलेगी। तो इन आयतों को अगर आप इस तरह समझें कि पूरे मीडिया का अगर ये ख्याल है ना कि तुम अल्लाह के रास्तों से हट जाओ और तुम अपनी मर्जी की शादियां करो, माँ बाप को बोझ समझो, तो ये गलत है। युरीदुल्लाहु युखफ्फिफ़ानकुम, अल्लाह ताला तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है। क्योंकि वह खुलिकल इंसानु दईफा, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरह से पता है तुम्हारे हक में क्या बेहतर है क्या बुरा है। आप देखिए इसको यूं समझिए कि माँ बाप जो 16-17 साल एक बच्ची को पालते हैं या चले 18-19 साल तक एक लड़के को पालते हैं, कितनी पुनछिन करते हैं ना रिश्ता लेते देते। और हमारे इंडो पाक कल्चर में तो सबसे मुश्किल इश्यू इस वक्त रिश्ते करना कराना है। एटमोस्ट कोशिश करते हैं ना कि अच्छा रिश्ता हो। तो अब सोचिए अल्लाह जो 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है, क्या वो हमारे रिश्ते बेकार कराएगा? अल्लाह चाहता है हमें मारे पड़े और हमें तकलीफें हों? बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह ताला के जो फैसले होंगे वो सबसे खूबसूरत होंगे। अब इसके बाद कुछ मनी मैटर्स और साथ ही खुदकुशी, आप ये इस जुमले को भी लिखें क्योंकि इस्लाम की वो सूरत जो उम्मत वसत की सूरत में दुनिया को दिखती है उसमें एक और इल्जाम है, और वो क्या कि इस्लाम इज इक्वल टू सुसाइड, सुसाइड करना है। वो आप कह रहे हैं, वो आपके मुसलमान कह रहे होंगे, इस्लाम क्या कहता है? इस आयत में आपको रद्द मिलेगा कि खुद को मारना, किसी दूसरे को मारना इसकी इजाजत नहीं है। कैसे? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से ना खाओ, लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को कत्ल ना करो, डोंट सुसाइड। तो जो इस्लाम खुद को कत्ल करने से रोक रहा है, क्या वो दूसरों की जान लेने की आपको मुझे दावत देगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जिसने भी इस्लाम के नाम से ये बात लगाई उसने ये आयत नहीं पढ़ी। हदीस में आता है जिसने खुदकुशी की तो वो क्यामत तक वही काम करता रहेगा, खुद को वैसे ही तकलीफ देता रहेगा जैसे उसने तकलीफ दे के खुद को मारा। यकीन मानो कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। इसको हाईलाइट करें, 3 सेकंड तक गौर तो करें इस पे। यकीन मानो कि अल्लाह तुम पे मेहरबान है। इन्ना अल्लाह कान बिकुम रहीमा। क्या आपको अल्लाह के ये सारे कानून पढ़ने के वक्त ये फीलिंग्स नहीं आ रही? मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह लव अस सो मच। हमें जितना अल्लाह ताला से प्यार है ना, अल्लाह ताला को इससे बहुत ज्यादा हमसे प्यार है। दुआ कीजिए कि हमें इसका एहसास हो जाए। जो शख्स जुल्म और ज्यादती के साथ ऐसा करेगा इसको हम जरूर आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। कबायर, बिग सिंस, मेजर सिंस की आयत है ये, कि किस तरह से? अब कबीरा गुना कौन सा होता है? हजरत अली कहते हैं हर वो गुना जिसे मामूली समझ के किया जाए वो कबीरा गुना है। बात वाजे? जब अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो छोटा गुना करेंगे बार बार बड़ा हो जाएगा, बड़ा गुना करेंगे बार बार करेंगे कुफर हो जाएगा। तो किसी गुना को हल्का ना समझिए, ये अल्लाह ताला की नाकदरी होगी। फिर फरमाया जो बड़े गुनाहों से बचते हैं अल्लाह उनके छोटे गुना खुद ही माफ कर देते हैं, और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे यानी जन्नत। जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है इसकी तमन्ना ना करो, और जो कुछ मर्दों ने कमाया इसके मुताबिक इनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया इसके मुताबिक इनका हिस्सा है। अल्लाह से इसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। क्या पता चला कि कोई लड़की ये ना कहे कि मैं लड़का होती। इसकी तफसीर में इब्ने अब्बास कहते हैं अगर अल्लाह ने आपको औरत बना दी इस पे खुश हो। वैसे बाय द वे मैं पूछूं कि आप में से किसकी ख्वाहिश है कि वो लड़का होती? ये भी एक आज का फेम है। मैंने एक यंग बच्चियों की क्लास में पूछा तो कई बच्चियों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा भाई, मैंने फिर उनसे एक एक पूछा, एक एक से पूछा क्यों, तो आप कहते कि वो कब चाहती थी लड़का हो, क्यों हो, जब भाई को तो इजाजत मिल जाती है रात को बाहर जाने की, हमें नहीं मिलती। जब भाई तो स्लीप ओवर के लिए जाता है तो हम नहीं जाते, दिस एंड दैट। तो बहरहाल फिर मैं उनको जो कह सकी मैंने उनसे कहा अल्लाह ने जो बना दिया शुक्र कीजिए, मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल करता मैं मर्द होती। जितनी मौजें औरतों की है इतनी तो मर्दों की तो है ही नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हाल पे राजी कर दे। फरमाए अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। और हमने हर उस तरके के हकदार वारिस कर दिए जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़े। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे एहदो पैमान हो तो इनका हिस्सा दो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर निगरान है। इसके बाद खूबसूरत सी आयत है, आयत 34 को हाईलाइट कर लीजिए। इस पारे की आयत तदब्बुर भी ये हो सकती है क्या? अर्रिजालु कवामुना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। मर्द औरतों पर कवाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से हर एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। यहां तक बात पूरी। सूरत बकरा से निसा तक मर्दों को कई बार उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया, जिसमें अब यहाँ एक आइडियल होम के इंग्रेडिएंट्स बताए जा रहे हैं। इस एक आयत पर अगर आज उम्मते मुस्लिमा काम कर ले, अमल कर ले, तो आप नोट करेंगे कि उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उनकी जिंदगी में वो खुशी दौड़ेगी जिसका कोई अंदाजा नहीं। दो जिम्मेदारियां हैं मर्द की, इस आयत की रोशनी में। नंबर 1, मर्द फिजिकली स्ट्रांग होता है, सच है कि नहीं? वजन मर्द ज्यादा उठा सकता है, डरपोक नहीं होता। घर में चूहा आ जाए तो कौन मारता है, छिपकली आ जाए तो कौन मारता है, चोर आ जाए तो कौन मारता है। अब आपके घर के हालात मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लाम कहते हुए कि मर्दों का जिस्म मजबूत है, स्ट्रांग है, मर्द को स्ट्रांग होना चाहिए। अपने बेटों को मुस्तकबिल के शोहर बनाकर पालें, बच्चों से काम करवाया करें। आज एक बहुत अजीब सी चीज आ गई कि बच्चियों और बच्चों दोनों से काम छोड़ दिए। उधर बूढ़े अब्बा जी काम करते रहते हैं, इधर बूढ़ी अम्मा जी काम करती रहती हैं, और बच्चे मेहमानों की तरह घर में रह रहे हैं। इसीलिए फिर आने वाले वक्त की जिम्मेदारियां नहीं उठाते। दूसरी चीज क्या है, कवाम है वो, खर्च करते हैं, बिमान फको मिनम वाले। ये तो आज भी रियलिटी है कि एक मुसलमान मर्द जो अपनी कमाई का 90% हिस्सा अपने घर पे लगा देता है, मेरा ले कोई भी मर्द बहुत भी अगर कमाएगा ना तो 10% अपनी जात पे लगाता है। करते क्या वो बेचारों ने, लेना क्या होता है, चंद पांच छह फटी हुई पेंटे हैं, जीन्स, और अगर पाकिस्तानी मर्द है तो 2-3 सफेद शलवार कमीज, और अगर इंडियन है तो पंजामे कुर्ते। मर्दों की है क्या जिंदगी? मैं अक्सर सोचती हूँ इनकी जिंदगी में चाम क्या है। उनको कुछ नहीं चाहिए, ना उनको ज्वेलरी चाहिए, ना अच्छे कपड़े चाहिए, ना उनको कोई सॉफ्टनर चाहिए, ना स्किन क्रीमें चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ के मर्द भी औरतों से ज्यादा बिगड़े हैं, वो मुझे आपके चेहरों से दिख रहा है। लेकिन आप देखिए, वाकई सच कहा किसी ने कि है तस्वीरें कायनात में, औरत से रंग है, औरत इस दुनिया की खूबसूरती है। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि औरतों को सब कुछ चाहिए, मर्द को औरत चाहिए, दैट्स इट। सब कुछ तुम लो, क्यों लो, औरतें क्यों ले, ताकि हम मर्दों को अच्छी लगे। एक बीवी अगर एक अच्छी बीवी बनती है, वो पहनती है, ओढ़ती है, घर को साफ रखती है, खाना पकाती है, खुशबूदार रखती है, मर्द के लिए उससे बड़ी नेमत क्या होगी। साथ ही वो दीन भी रखती है, बच्चों की भी हिफाजत करती है। अब इसलिए आगे मेरे और आपके लिए एक लंबी लिस्ट आ रही है। इतनी बातें मर्दों की हुई, अब कहा कि अच्छी बीवी कौन सी है। पहले मैं आपसे पूछूं अच्छी बीवी कौन होती है, तो आप में से कुछ कहेंगे मैं, अपना नाम लिखेंगे, हो सकता है सच है। आइए चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। ये जो भी चीजें हम पढ़ने लगे हैं, इसको हम सब अपने अंदर ढूंढें। और फिर उसके बाद कल पूछा था हस्बैंड से कि मैं कैसी बीवी हूँ, आज पूछ लीजिएगा। आज सबको खुद भी पता चल जाएगा कि आप कैसी हैं। पहली खूबी फसालेहात कानितातुन, पहली चीज क्या है, फसालेहातुन कानितातुन हाफिजातुन। नेक बीवी की अलामतें, वो सालेह औरतें हैं, नेक होती है, उसके दिल दिमाग पे कोई औरत नहीं होता। देखिए, औरत को वैसे ही पाक रखना है खुद को, शादी के बाद कोई दूसरा उनके ख्यालात में भी ना आए। कोई माजी में ताल्लुक था, खत्म कर दिया, दैट्स इट, कभी ना करें। और कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द को सोचे। सालेहा नेक, 5 वक्त की नमाजी, हदीस में आता है कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, और इसी तरह की चंद और खूबियां, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से गुजरे। मेरी और आपकी जन्नत तो इतनी आसान है, हमारी जन्नत तो अल्लाह ने हमारे घर में रखी हुई है। मर्दों बेचारों को तो क्या कुछ कर करा के ये सब कुछ मिल जाता है, तो लिहाजा इन सारी चीजों पे इंसान अपने आप को अल्लाह के आगे शुक्रगुजार समझते हुए अल्लाह का काम कर दे। फिर दूसरी को भी देखिए, कानिता, तो मुझे और आपको कानिता बनना है। कानिता क्या होती है? देखिए, कनूत में 2 चीजें होती हैं, दवाम और आजजी, हमेशा हो, एवरलास्टिसिटी हो, और हम्बल हो। ये नहीं कि चाय का कप दिया, ऐसे फेंका कि उसमें आधी चाय एक प्लेट में गिर गई, ये लंबी है चाय, आपकी चाय नहीं खत्म होती। काम करे तो मोहब्बत से करे और हमेशा करे। ये नहीं कि जब बाजार जाना है उसे कि आप चाय पियेंगे, अभी बना के लाती हूँ। कुछ हस्बैंड भी अब इतने होशियार हो गए हैं, वो कहते हैं जिस दिन बेगम भाग भाग के काम कर रही होती है, हमें समझ आता है आज इसने कहीं जाना है, आज इसने कोई इजाजत लेनी है। लेकिन औरत के मिजाज में कनूत, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जो भी है खुशी का जरिया बने। देखिए, जब अल्लाह ने आपके लिए इतनी खुशियां रखी हैं और आपके मर्दों को अल्लाह ताला ने थोड़ी सी चीजों से बहलाया, तो आप और मैं अगर अपने मर्द को खुश नहीं करेंगे, और याद रखिए कि इसमें सबसे बड़ी बात जो कनूत में, और भी उनकी खिदमतें हैं, लेकिन एक खास हक के ज़ौजियत, उसकी अदायगी एक तरफ इशारा है। हदीस में आता है कि जो बीवी अपने मर्द की ख्वाहिश को बुरा नहीं करती और मर्द इसी तरह गुस्से में सोता है, तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी या उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब इस पे औरतें बहुत परेशान होती हैं, ये क्या मुसीबत है, कैसे मुसीबत है? आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने शादी को एक मकसद के साथ रखा। एक मर्द है, शादी से पहले उसको क्या नहीं मिलता? कपड़े उसकी माँ धो देती है, स्त्री बहनें कर देती हैं, खाना नानी बना देती होगी, हर चीज होती है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि एक औरत को उसके पास बीवी बनाकर भेजा ताकि वो उसकी ख्वाहिश पूरी करे। अब एक मर्द की बीवी का अगर मिजाज बिगड़ा हुआ है, हर वक्त ही ये हालात है, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसकी शादी तो नाकाम हो गई। क्या क्या वो गुनाह की तरफ जाए, वो कहां से जाए। मेरा ख्याल है कि औरतों के लिए तो एक बहुत खुशी का मुकाम है कि मेरे सिवा ये काम आपके लिए और कोई नहीं कर सकता, तो इसको आदमी खुशी बनाए। ठीक है, औरतों में इसकी कम हो सकती है ख्वाहिश, तो इबादत समझें। रात के इबादत मुश्किल है कि नहीं? रोजा आप रखा हुआ आसान है कि मुश्किल है? हज करते हैं तो मुश्किल है, तो क्या इससे भी कोई मुश्किल बात है अपने शौहर को खुश करना? लिहाजा बहुत सारे मर्द जब गलत चीजों में जाते हैं, वजह कोई और हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बीवी का मिजाज ठीक नहीं है। और इससे रेलिवेंट फिर हर चीज एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। ये मौजू भी हमारा फेवरेट टॉपिक है, इस पर बहुत कुछ बोला हुआ है, 60 टिप्स हैं, एक अब यूट्यूब पे भी है अवेलेबल, 60 टिप्स टू बी अ सक्सेसफुल वाइफ, और इस पर भी मेरा घर मेरी जन्नत, होम स्वीट होम, इस तरह के बेशुमार लेक्चर वेबसाइट पे मौजूद हैं, पूरी सीरीज हैं, तो इससे आप फायदा उठाएं ताकि मेरा मिजाज दुरुस्त हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की बच्ची और औरत का मिजाज थोड़ा सा ऊपर चला गया। अल्लाह ताला कहते हैं वो खुशी देने वाली हो, इताअत शुआर हो, मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में हो। कैसे? मर्दों के माल की हिफाजत करें, फजूल खर्चियां ना करती फिरें, उनके बच्चों की हिफाजत करें, उनकी चीजों की हिफाजत करें, उनके बूढ़े माँ बाप की हिफाजत करें। औरत के मिजाज में हमेशा देना है। आप आगे जाके पढ़ेंगे, चींटियों की बात होगी, शायद की मक्खियों की बात होगी, सब जगह जहां खैर है वो फीमेल्स में। अल्लाह ने इस कायनात में औरतों को वो खूबियां बस दे दी जो कि मर्दों को भी नहीं दी। आप देखिए कि जैसे अल्लाह ताला की जात रब है ना, तो औरत को भी रबूबियत यानी तरबियत करती है। अल्लाह ताला लविंग है, अलवदूद है, औरत के मिजाज में मोहब्बत डाल दी। तो आज जो हमारा एक सेटअप बन चुका है ना, उसमें बाज़ औरतें परेशान होती हैं। मैं माजरत के साथ कहूंगी कि आज का जो मौजूदा तर्ज तालीम है, ये औरतों को, लड़कियों को अकड़ देता है, उनके अंदर एग्रेशन आता है। हमें इज्जत नहीं दी, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? औरतें ये मर्द हैं, औरतों को थोड़ी जगह दो, मर्दों को ज्यादा दो, बस हम नहीं करेंगे। होता क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में टूट जाती हैं, झुकती नहीं है। हालांकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज झुकी हुई होती है। फूलों की डाली क्यों खूबसूरत लगती है? झुकी हुई है। औरत के मिजाज में झुकाव होना चाहिए, यह है औरत का नरम होना, सुकून, माफ करने वाली, प्यार वाली, लविंग, केयरिंग, घर की हिफाजत करती है। आप देखिए ऐसी औरत कितनी मोहब्बत लेती है। एक दफा मर्द के गुस्से पे आप दब जाए, फिर देखिए बाद में वो कितना आपसे उसका रियलाइजेशन करेंगे। और अगर आप उनको एहसास दिलाने वाली और आप कहते एक दिन तुम बर्तन दो, दूसरे दिन मैं दूंगी, क्योंकि इक्वेलिटी, इस शायद के ऊपर भी लोगों ने बड़ा जुल्म किया। इक्वेलिटी के नाम पे फिर औरतों को नारे लगवाए, अच्छा हमारी गवाही आदि है, अच्छा हमारी पे नमाजें भी आदि कर दो, और हमारे हकूक का में तो ये भी कम कर दो। हालांकि अल्लाह ने हर तरह से औरत को सिक्योर किया, लेकिन जिनको बिगड़ना होता है ना, वो बिगड़ते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम इस पे राजी हों। आप अगर अपने आप को एक सच्ची मुस्लिमा बना लेती हैं, फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपकी कितनी हिफाजत करता है। हाँ, लेकिन इसके बरक्स अब अगली आयत जो आपसे ज्यादा नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं वो भी पढ़ लीजिए। वल्लाति तखाफूना नशूज़हुन्ना फइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजी वद्रिबूहुन्ना। और जिन औरतों की सरकशी का तुम्हें अंदेशा हो, इनको समझाओ, ख्वाबगाहों में लहता करो और मारो, फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाए तो ख्वामखा इन पर दस्तराजी के बहाने नर तलाश करो। यकीन करो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बाला बरतर है। और अगर तुम लोगों को कहीं मियाँ और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा हो, तो एक हकम मर्द के रिश्तेदारों में और एक हकम यानी थर्ड पर्सन औरत के रिश्तेदारों से मुकर्रर करो, और वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला इनके दरमियान मवाफकत की सूरत निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता और बाखबर है। ये आयत भी बहुत मिस इंटरप्रेट की जाती है, और खास तौर में इसके लफ्ज वदरीबू हुन्ना, मारो इनको। मुसलमान शौहर कौन है जो बीवियों को मारता है? मुसलमान वहशी जंगली फला मारते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खानदान मुस्लिम है। आप अपनी पूरी फैमिली को सोचिए, पाकिस्तान, इंडिया, जहां भी कोई रहते हैं, और जहां भी कितनी औरतों को मार पड़ती है अपने शौहरों से। माजरत के साथ, कभी आपको पड़ी? आपकी अम्मी को आपके अबू से पड़ती थी? आपके खालू मारते हैं, आपके भुप्पा, ताया, चचा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इतनी उम्र में किसी को नहीं देखा। हाँ, कौन मारते? वो कोई नशई और चरसी, वो भंगी, और वो अपनी बीवियों को सारा दिन पैसे कमाने की मशीन बनाते हैं, वो नहीं दे पाती तो मारते हैं। तो वो तो आज भी मरते हैं, कल भी। हॉलीवुड की अदाकारें भी पिसती हैं, उनको भी मार पड़ती है। अमेरिका में भी औरतों को मार पड़ती है। वुमेन जितनी अब्यूज वेस्ट में हुई, इतनी तो ईस्ट में हुई भी कोई नहीं। असल बात यह कि इशू बना दिया। अब मारो कैसे? मारो कुरान से पूछें किससे कि मारो? डंडे से मारो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे अच्छे मर्द कभी नहीं मारेंगे। खुद अल्लाह के नबी की माशाल्लाह इतनी बीवियां थी, आपने कभी किसी को नहीं मारा। फरमाया अगर मारना पड़े मुंह पे नहीं मारना, मिसवाक लेकर, यानी ये बुक मार्क तो बहुत बड़ी चीज है ना, आप सोचिए ये पेन भी भारी होता है, मिसवाक हल्के, कितना मारो चपत लगाओ ऐसे, और ये तो प्यार से भी लगा सकते हैं, ये तो एक झापड़ है, उसके शौहर को बेदार करो। और इस पहले की आयतें सब भूल गए, इस आयत को हाईलाइट कर लीजिए कि जब औरत में बिगाड़ आए, जब औरत बहुत ही खुद को बड़ा समझ रही है तो फिर उसको क्या करो। पहली बात मैं ये भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि औरत अपने आप को बड़ा कब समझती है, जब वो देखती है शादी हुई, सारा जहेज मेरे माँ बाप ने दिया, ये पलंग जिस पे मैं सो रही हूँ ये मेरे मायके से आया, ये मेरे मियाँ के हाथ में जो रॉडो की घड़ी है ये मेरे माँ बाप के घर से आई, शादी की बारात का जो खाना कई लाखों का बना मेरे माँ बाप ने दिया, अब अकड़ेगी तो सही। आप पहले शादियों को इस्लाम पे तो लाइए, आप पता इस्लाम में शादी कैसे होती है, एक मर्द अपनी हैसियत से, एक कमरे का घर है, एक घर में रहते हुए एक छोटा सा कमरा कुछ है वो अपनी बीवी के लिए खुद तैयार करता है, उस कमरे में पलंग है, चारपाई है, मैट्रेस है, ये मर्द लेके आएगा। उस शादी के मौके पे 10-12 लोग जो भी आए हैं उनको कुछ खिलाना है पिलाना है, ये मर्द खिलाएगा। घर जाके लड़की के इज्जत के साथ वहां जाकर उसका बाप ही निकाह पढ़ा दे या कोई पढ़ा दे, इजाब व कबूल में प्यार मोहब्बत में उस लड़की को लाएगा, कोई एक पैनी भी अगर उनको ऊपर ना लगाए, वो चाय का कप भी ना पूछे, कोई हरज नहीं, घर लाए अपने मेहमानों को, 4-6 जो बुलाए उनको खुद खिलाइए, अगले दिन आप जितनी मर्जी शान से वलीमा करें, आप सारे शहर को बुला ले, 1,000-2,000 बुला ले, मर्द करेगा। बीवी घर में आई, नमक मिर्च मर्च मसाले से लेकर स्त्री स्टैंड जो भी वॉशिंग मशीन वार्डरोब की चीजें मर्द लेके आएगा। अब आप इमेजिन करें जब ऐसी शादी होगी तो क्या औरत के मिजाज में नशूज होगा, नशूज क्या कहते हैं उभरना, ऐसी कैफियत, अपने आप को बड़ा समझना, जब मर्द लगाएंगे तो औरतें डोमिनेंट नहीं होगी। अब जब औरतें देखती हैं कि कर सब कुछ हम रहे हैं तो हम मर्द की क्यों माने, फिर एक दूसरा मामला बिगड़ गया कि मर्द को अल्लाह ने कहा था बीमान फकू खर्च करो, खर्च करने के लिए कमाएगा, खर्च करते हैं तो कमाते हैं, इस्लाम ने कमाने की पूरी जिम्मेदारी मर्द पे डाली, ये औरतों को एक तोहफा दिया अल्लाह ने कि औरतों तुम ना कमाओ, ना ये फर्ज है ना सुन्नत है ना हराम है। जितनी वर्किंग वुमेन है वो परेशान हो जाती है जब अधूरी बात सुनती है, तो पूरी तरह से इसको भी समझ लीजिए कि औरतें काम ना करें तो गुनाहगार नहीं है, औरतें घर में एक पैनी पैसा भी नहीं लेके आ रही घर के खर्चे में कोई गुनाह नहीं, कितनी रिलैक्सेशन है। अब इसके बाद है कि जो जाती हैं जॉब करती हैं वो क्या, वो ऐसी है कि अल्लाह ने एक तोहफा दिया था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह कि घर को भी ले रही है बाहर को ले रही है, इट्स फाइन। औरत की असल जिम्मेदारी उसका घर है, उसके बच्चे ना निगलेक्ट हो, उसके बूढ़े सास ससुर निगलेक्ट नहीं हो रहे, उसके घर से नौकर चीजें उठा के ले रहे और घर सारा खराब हो रहा है, ये नहीं करना। औरत घर को देखे नस्लों को परवरिश करे, अल्लाह ने औरत की गोद में नस्लें दे दी और औरत को जितना स्टेमिना दिया वो इतना ही कर ले तो बड़ी बात है। सुबह मर्द जब घर से जाते हैं घर का क्या हाल होता है, शाम को आते हैं कैसा खूबसूरत सजा हुआ घर, खाना भी पका हुआ, बच्चे भी खुश हैं, बीवी भी साफ सुथरी है, कमरा भी साफ सुथरा है, कौन रोकेगा उस मर्द को उस बीवी से मोहब्बत करने से, कितना उसको सुकून मिलेगा, दफ्तर से तक आते ही कहेंगे खाना लगा दो, खुशी की बात है, बात भी कहते आते ही इनको खाना चाहिए, इनको गर्म रोटी चाहिए तो भाई शुक्र कीजिए, मेरे मर्द चाहते हैं कि मैं घर हूं तो तुम घर हो, अक्सर औरतों को ये गिला, तो आप क्या चाहती हैं, आप कहा कि तुम मैं घर हूं तो मुझे शक्ल ना दिखा, क्या हम ये चाहते हैं, यानी जो अल्लाह ने इनाम दिए ना हम उसको बोझ समझते हैं। देखिए इसके अंदर फिर वही वेस्टर्न सोच है, पीछे से लोगों ने इतनी फीड की ये चीजें, हमें कुरान की ये तफसीर समझ ही नहीं आती। एक चीज होती है सिक्योरिटी और एक होती है कैद, आप दोनों को समझिए। आपको कहा जाए कि मर्द आपकी टेक केयर करे, मिसाल है कि आपको कहा जाए कि आप अपने घर में रहे, मर्द आपकी हिफाजत करता है, आप कहेंगे सुभान अल्लाह आई एम सो सिक्योर, और दूसरी सोच है हाँ घर और घर दीवारी चादर और चार दीवारी ये क्या मुसीबत है, ये तो घर कैद बना दिया। फर्क किसी को जेल में डालने या किसी को सिक्योर करने में क्या है कि आप देखिए आप अपने गोल्ड और डायमंड्स को जाके लॉकर्स में रखते हैं तो औरत तो उससे बहुत कीमती है। तो इस्लाम औरत को तहफ्फुज़ देता है, लेकिन अगर औरत का मिजाज बिगड़ा होता है वो उसको अपने खिलाफ समझती है। तो जब आप इस खुशी के साथ मियाँ के साथ चलते हैं घर नहीं टूटते, वो बाहर के थके हुए मर्द में स्टेमिना ज्यादा है, वो धूप गर्मी सह लेते हैं, अल्लाह के हुक्म से घर चलता। अब इसका ऑपोजिट जरा एक घर सोचिए, मियाँ सुबह 8 बजे जा रहे हैं, बीवी को शायद 7:30 निकलना पड़ा, दोनों काम पे जा रहे हैं, दोनों भूखे हैं, नाश्ता है, मियाँ बेचारा या तो नाश्ता खुद भी बना के बीवी को भी दे देगा या बीवी जला सड़ा तोश छोड़ के जाएगी आप खा लीजिएगा, मियाँ चला गया बीवी चलेगी, वो भी 5 से 8 घंटे की जॉब करके आया बीवी भी आई, अब बीवी मियाँ साथ आए, घर वैसे का वैसा गंदा जैसा छोड़ के गए थे, खाना पका नहीं, फ्रीजर का 8 दिन का पुराना खाना एक निकालेंगे गर्म करेंगे, घर में कोई चीज वक्त पे नहीं, कुछ नहीं। अब बीवी भी 8 घंटे की जॉब के बाद आई, उसने आते ही किचन संभाला, खाना गर्म किया, खिलाया पिलाया, अब मर तो सकता है, उसके बाद सो जाएं, जिम में चले जाएं, कुछ भी करें, मस्जिद में चले जाएं। बीवी ने घर साफ किया, अगले दिन की तैयारी की, बच्चों को होमवर्क कराया, उनको सुलाया, अगले दिन की तैयारी की। अब वो थकी टूटी बीवी मियाँ को क्या खुशी देगी? अब ऐसी थकी बीवी जिसको आपने, जैसे आपने एक मर्द बनाया, मर्द उससे कोई तकाजा करेगा वो भंड होगी, कहेगी मैं थकी भी, मुझे नहीं चाहिए, मैंने सुबह जाना है जाना है। आप बताइए वो घर है कि अस्तबल है? ऐसे घरों को जो बीवियां चलाती हैं मेंटेन करके, वाकई उनकी हिम्मत है। लेकिन ये ऐसी है कि किसी की हिम्मत 5 किलो उठाने की है, आप उसको रोज ही 10 किलो 15 किलो उठा दें, एक दिन नर्व्स पे शटर होंगी, फिर वो खपती हैं, फिर तंग आती हैं, फिर जब बीवी कमाने लगती है तो मर्द पीछे हो जाते हैं। ये याद रखिए, यहाँ की स्टाइल की बात नहीं कर रही, कमूमी बात है। दौलत डबल हो जाएगी लेकिन बरकत आधी हो जाएगी, और ये मैंने कई सिस्टर से कहा है। जब हम नहीं कमाते थे तो भी यही हालात है, अब हम कमाते हैं पैसे जाते किधर है? कोई कहता है पैसे घर आते ही कोई नहीं है, वो तो बाहर बिलों में चले जाते हैं, कोई कहता है इधर चला जाता है। तो सारी बातों का खुलासा है कि आप पहली नजर अपने घर को देखें, बीवी बन के रहें, माँ बन के रहें, घर अच्छा तरीके से रखें, उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं, फुल टाइम कर रही हैं, जो आपका दिल है। बच्चों को इग्नोर नहीं करना, पता चला आपके अपने बच्चे डे केयर में किसी नॉन मुस्लिम औरत के कब्जे में, और आप जाके किसी और के ऑफिस को सजा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है, फिर वो बच्चे दूर होते हैं। मैंने एक किस्सा कहीं पढ़ा था कि एक बच्चा था, तो वो माँ काम पे गई हुई थी, जब रात को वापस आई तो देखा बच्चा बड़ा उदास है, 8-9 साल का बच्चा है। तो खैर माँ थकी हुई थी, उसको देख के बात की, तो कहता कि मम्मी मुझे एक आपसे सवाल पूछना है। तो माँ पहले ही थकी हुई थी, क्या पूछना है? कहने लगा मम्मी मुझे ये बताओ कि तुम्हें 1 घंटे के काम के कितने पैसे मिलते हैं। माँ को गुस्सा आ गया, ये तुम मुझसे पैसों की बातें क्यों पूछ रहे हो, चले जाओ, डांटा। बच्चा रोता हुआ वहां से उठ के अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में माँ सेटल डाउन हुई, उसको लगा पता नहीं मैंने क्यों ऐसे कह दिया, गई तो देखा बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बताओ क्या हुआ? कहने लगी कि पूछो क्या पूछ रहे थे। कहने लगा कि कितने पैसे मिलते हैं आपको 1 घंटे के। तो माँ ने कहा मुझे $20 मिलते हैं। तो बच्चे ने फिर अगला सवाल कर दिया, अम्मी कैन आई हैव $10 प्लीज। फिर माँ को गुस्सा आ गया, इसीलिए पूछ रहे हो कि मेरे से? कोई नहीं है मेरे पास पैसे। फिर दबक दिया, थोड़ी देर फिर गुजरी, फिर ख्याल आया, तो कमरे में गई तो बच्चा जो था वो रो रहा था, और रोता रोता सो गया, और उसके हाथ में क्या था, एक चुड़ा मुड़ा नोट था। माँ ने प्यार किया, बच्चा उठ गया, कहा मम्मी क्या, ये लो पकड़ो $10, क्या करोगे? माँ ने $10 दिए, तो बच्चे ने वो हाथ के चुड़े मुड़े $10 जो बचाए थे वो जमा किए, कहेंगे मम्मी कैन आई हैव 1 आवर फ्रॉम यू प्लीज, ये $20 मुझसे ले लो और मुझे 1 घंटा दो। देखिए ये हकीकत है, बिटर है मुझे पता है, और ये बात मेरी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरा पर्सनल इसमें कोई व्यू नहीं है, मैं सिर्फ ये देखती हूँ जो कुरान ने खूबसूरत निजाम दिया। आज मैं और आप चाहते हैं ना कि दुनिया में इस्लाम फैले, तो फिर हमें ये मेयर्स लेने पड़ेंगे। मैं ना हराम की बात कर रही हूँ, ना फतवे, ना फिक, नथिंग, जो कर रहे बहुत अच्छा कर, करें तो वो जॉब्स कीजिए जिसमें आपकी औरत बन रहे। स्कूल टीचिंग बेस्ट जॉब है औरतों के लिए, डे केयर टीचिंग बेस्ट थिंग है, आप खाना पकवाएं, कैटरिंग करें, घर में रह के अपने मर्दों की मदद करें, ये आपका सदका होगा, गुना नहीं है। लेकिन आप अपने आप को एक दूसरे मर्द की तरह घर में लेते हैं, इससे घर टूट रहे हैं, कोई टॉलरेंस नहीं रहती। मर्द जब भी भूल जाते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं लैसा ज़करु कलुन्सा, मर्द कभी औरत जैसा नहीं होगा, मर्द को बच्चा औरत से पैदा कराना है, फिर बीच में प्रेगनेंसी पीरियड मेनोपॉज के प्रॉब्लम ले आए, तो औरतें तो आज के दौर में मजलूम है। कहने को आज कहते हैं कि मुस्लिम औरत परेशान है, उस पर जुल्म है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नॉन मुस्लिम आज ज्यादा बेचैन है। चार चार छह छह बच्चे एक औरत के साथ बसों ट्रेनों में आपको दिखते हैं, मर्द एक भी नहीं है। किधर के कवाम इस इंसानियत के? आज बिल्ली अपने साथ 6 बच्चे लेके फिरती है, कोई बिल्ला साथ नहीं होता। आज इंसानियत को वो दर्द दिया इंसानियत के गंदे कवानीन ने कि अपने ख्वाहिश को पूरा करने वाले मर्द भाग जाते हैं। औरत तो माँ है ना, वो चाहे शादी के बाद का बच्चा है, पहले का है, वो किस तरीके से हुआ है, औरत तो नहीं छोड़ेगी, फिर वो ले लेके फिरती है। किसी ने बताया कि एक औरत उनको कहीं मिली, उसके पास 4-5 किस्म के मुख्तलिफ बच्चे थे, ये समझी कि ये कोई डे केयरिंग करती है, डिफरेंट बच्चे हैं। कहने की नहीं ये मेरे बच्चे हैं। कहो अच्छा तुम्हारे बच्चे हैं? तो वो देखा एक अरब बच्चा है, एक देखने में काला लग रहा है, कोई है, यानी डिफरेंट सोच के। तो कहने लगी कि तुम्हारा हस्बैंड किस कल्चर से है? कहें कि नो सॉरी मैंने अभी शादी नहीं की। कहा शादी क्यों नहीं की? कहती अभी तक मुझे कोई मर्द इस काबिल ही नहीं मिला कि मैं शादी करूं। ये हो रहा है आज, जो जानवरों की जिंदगी थी आज उस पर इंसानियत आई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को बचाए। ये चीजें आगे कुरान में हम 8वें पारे की शुरू में भी, कुछ और आयतों के रेफरेंस से भी देखेंगे। लेकिन याद रखिए मेरा आपका एक खूबसूरत तर्ज जिंदगी, मेरे लिए आपके लिए हजरत आयशा खदीजा फातिमा ही रोल मॉडल है, फिर हम बचेंगे। जब हम गैरों वाले बनकर उम्मत वसत बनना चाहे बन नहीं पा रहे, और मुझे लग रहा है इस दौरे कुरान में हम अंदर के रोग खोल रहे हैं। एक होता है ना कर लो, मत बसत बनो, मैं कह के चली जाऊंगी, आप भी जाएंगे वरना बाहर जाएंगे कुछ भी नहीं हो रहा। वो रीजन तो ढूंढो। एक रास्ते में एक ऐसा वॉस पड़ा है जिससे आते जाते को ठोकर लगती है, तो मैं आपसे कहूँ ठोकर नहीं खाना, बच के जाना, तो क्या है उसको उठा के उसको दूसरी जगह पे रख दूँ। इस वक्त मुसलमानों को जरूरत है, ना सिर्फ ये कि अपने मुस्लिम सेटअप को दुरुस्त करें, नॉन मुस्लिम को भी मशवरे दें। और मैंने ऐसी अब आवाजें सुनी है कि कई मुस्लिम स्कूल हैं कुछ शहरों में अमेरिका के, कि जहां मुस्लिम्स के साथ नॉन मुस्लिम बच्चे भी आ रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन हमें ये पता है कि तुम्हारे स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं वो एटिकेटेड ज्यादा अच्छे हैं, वो माँ बाप के रिस्पेक्टफुल है, आई थिंक यू आर गुड पीपल। मुस्लिम से छोड़ के नॉन मुस्लिम बच्चों से भर लें अगर हम अपना इस्लाम लोगों को दिखाएं। दुआ कीजिए कि हमारा ये वक्त वर्थ इट हो जाए, क्योंकि ये बातें किए बगैर रमजान गुजर गया, दौरे कुरान पूरा हो गया, तो बात नहीं बनेगी। अल्लाह ने टूटते हुए घर को इतनी हदों में रख के बजाय ये कर लो वो कर लो, ये नहीं है फिर तीसरे को बुलाओ, फिर नहीं होती फिर तलाक दो। इस्लाम पसंद ही नहीं करता घर टूटे। और यकीन करें मैं आपको दुख के साथ कहूंगी, जैसे कभी घरों में कप और ग्लास टूटते थे ना, आज उस तरह घर टूट रहे हैं। छोटी छोटी बात पे घर टूट रहा है। अंदर वो अना कब होता है, औरत में कानिता होना नहीं और मर्द में कवामियत नहीं है, मर्द की नजरें पाक नहीं है, औरत का दिल पाक नहीं है, और ये हालात है। वापिस आना पड़ेगा। एक घर टूटता है ना तो पूरे उम्मत के अंदर एक दरार पड़ती है। ये घर के खानदान क्या है, उसी जो हमारी सीरीज है फैमिली लाइफ की जो निकाय टू थी, उसकी पहली थीम बात ही है कि खानदान फैमिली इज अ यूनिट, जहां से बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज फैमिली, तो आप कह सकते हैं कि किड्स प्रोड्यूसिंग मशीन। हमारे आपके घरों से बच्चे पैदा हो रहे हैं। किसी भी मशीन के सही काम करने या गलत काम करने का क्राइटेरियन क्या होता है, प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट ठीक है तो मशीन ठीक है। तो अब आइए जरा हमारा प्रोडक्ट, हमारे बच्चे जो आज ड्रग्स में गए, जो इधर उधर गए, जिनको कोई जिम्मेदारियां नहीं लेनी, दैट मीन प्रोडक्ट इज रॉन्ग, दैट मीन मशीन इज रॉन्ग, उसके पुर्जे टेढ़े हैं। आखिरी बात करके आगे चलते हैं। आप देखिए कि किसी के घर में वॉशिंग मशीन थी, काम नहीं किया, कोई बुलाया किसी को अनाड़ी से बंदे को, उसने कहा अच्छा ऐसा करो वो जो तुम्हारे घर में ब्लेंडर पड़ा उसके कुछ पुर्जे लाओ, वो लाया और उसने आपकी मशीन में डाल दिए। थोड़ी देर बाद फिर देखा कुछ नहीं, मतलब वो कहता है वो गाड़ी में से एक तार उतार के लाओ। वॉशिंग मशीन में जब ब्लेंडर के पुर्जे, गाड़ी के पुर्जे, चॉपर के पुर्जे लगाएंगे तो वो वॉशिंग मशीन चलेगी? बस ये आज हमने इस्लाम के साथ किया। इस्लाम की मशीन में कहीं हमने कोई मजहब का पर्जा लगाया, कहीं कल्चर का लगा दिया, किसी मुआशरे का, किसी की मित का, और नतीजा हुआ कि फिर कहते हैं इस्लाम चलते ही कोई नहीं, इस्लाम को चलना ही नहीं आता, इस्लाम तो इतना। आप इस्लाम की गाड़ी में पूरे इस्लाम के पुर्जे लगाएं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ्फा, पूरे के पूरे इस्लाम की लज्जत है। कल शाम को मेरी किसी से बात हो रही थी ऐसी, तो वो कोई अपने इशू छेड़ रही थी, तो कह रही कि मैं कम से कम ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए जो बेटी आए, यानी लड़की ढूंढ रही थी अपने बेटे के लिए, तो उन्होंने कुछ इस तरह की बताया कि मैं कहती थी कम से कम लड़की, चलो ये तो करती हो ना, और ऐसा तो हो ना ऐसा। खैर वो एक दो और बातें, तो मैंने उन्हें कहा देखिए मैं आपको एक मशवरा दूँ, अच्छा लगे या बुरा, कि कम से कम का लफ्ज निकाल दें। कम से कम के साथ जो बच्ची आप लेके आएंगी ना वो कल आपके लिए मसला होगा। हुआ उनके साथ, उसी को डिस्कस वो कर रही थी। मैंने कहा ये इसलिए हुआ कि आपने लीज सोचा, वो लीज से भी नीचे निकला, आपने रिश्ता तोड़ दिया। और अगर आप ये कहती नहीं मुझे अपने बेटे के लिए द बेस्ट मुस्लिमा चाहिए, आइडियल कौन सी, सालेहा कानिता हाफिजा, फिर देखिए घरों को सुकून मिलता है। तो ये जो हमने दो तीन रंगों की चीजों को मिलाकर इस्लाम बना लिया, ये आज का बिग प्रॉब्लम है। देखिए इस एक आयत ने मुझे और आपको बेटे और बेटी की तरबियत करना भी सिखा दिया। बच्चियों को शुरू से काम में लगाएं, अपने साथ रखें, उनको दबाएं। बेटियां ऐसे नहीं होती, बेटियां बाहया होती हैं, उनके कपड़े, उनके बाजू, उनकी हर चीजें ढकी हो। बाप आते थे तो बच्चियां बाप बाप के आगे जूते रखती थी, उनके हाथ का ब्रीफ कैसे उठाना, ये कुर्सी बाप की, इधर कोई नहीं बैठेगा, पहले अब्बा खाएंगे। चिकन में लेग पीस सिर्फ बाप के लिए होता था। ये हम सबकी बातें, अगर आपको बुरी लगे तो माफ करें, लेकिन आज कोई रोब है, अब्बा घर में आए या ना आए को फर्क पड़ता है? अब्बा के सर पे नाच के बच्चे खड़े हो जाते हैं, बाप की इज्जत कहां से होगी? बच्चों को शुरू से हमने रिबेलियस बना दिया। बेटा आप क्या चाहेंगे, व्हाट यू वांट, व्हाट यू लाइक। एक माँ ने मेरे सामने एक बच्ची को कहा, 3-4 साल की बच्ची थी, और कहा बेटा व्हाट यू वांट। मैंने कहा सॉरी आप प्लीज इस जुमले को चेंज करें, डोंट से दिस वर्ड टू योर किड्स, व्हाट यू वांट, ये कहना है ज्यादा, ये मुझे व्हाट यू नीड। शुरू से आप इनको वांट्स पे लगा रहे हैं, तो वॉन्ट तो सर पे नाचती है, वो माँ फिर डांटती है, आइसक्रीम लेने खड़े हैं तो वॉन्ट वॉन्ट में पता चला पिछली गाड़ी हॉर्न कर रही है। मत इन छोटों को बिगाड़े, आप इनको खिलाएं, आप इनको पहनाएं, जो आप इनको देंगे देखिएगा इनको कितना मिलेगा। एक इतना सा बच्चा और आप इतनी जवान औरत, दोनों की राय एक हो सकती है? आप दीजिए जरा अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बच्चे को और वो उसमें सिर्फ कैंडीज लेके आएगा। वो कहेगा हमें प्याज नहीं चाहिए, टमाटर नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, हमें कोक चाहिए। तो इतने मासूम बच्चों से इतने बड़े फैसले लेंगे। तो ये ट्रेंड बचपन से शुरू होता है जो शादियों पे टूटता है। ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एकदम चेंज नहीं आता। आज अगर घरों की खराबी है तो उसके पीछे वजह फिर वही रेजिंग प्रॉब्लम है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो हमें इस चीज को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करके ला के दे।